अब आप रजनीश कुमार यादव पीए पार्ट थ्री के आवाज में छायावाद की भूमिका में छठवां शीर्षक जागो फिर एक बार के बारे में सुनेंगे। व्यक्तित्व की स्वाधीनता प्रकृति का साहचर्य और स्वतंत्र नारी की शक्ति का सहयोग पाकर आधुनिक पुरुष व्यापक सामाजिक और राजनीतिक जीवन में सक्रिय रूप से भाग लेने लगा। वह केवल प्रेम और सौंदर्य का ही बंदी नहीं रहा, उसने केवल प्रेम राज्य में ही रूढ़ियों के विरुद्ध विद्रोह नहीं किया, बल्कि जीवन के जिस क्षेत्र में उसे विषमता, पराधीनता और अन्याय दिखाई पड़ा, वहीं उसने संघर्ष आरंभ कर दिया। इस व्यापक राष्ट्रीय जागरण का प्रभाव छायावाद की कविता पर भी पड़ा। निसंदेह यह प्रभाव सब समय अत्यंत अस्पष्ट और प्रत्यक्ष नहीं था, और यह छायावाद का कोई अपराध नहीं है। कविता राजनीतिक और सामाजिक घटनाओं का अविकल अनुवाद नहीं है। विविध राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक घटनाएं मानव व्यक्ति के मन पर जो सम्मिलित प्रभाव डालती हैं, कविता उसकी भावात्मक प्रतिक्रिया है। काव्य में अभिव्यक्ति अनुभूति इतनी संश्लिष्ट होती है कि उसमें से राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक आदि तत्वों का विश्लेषण सरलता से नहीं किया जा सकता। किसी गीत की व्यथा का मूल स्रोत कौन सी सामाजिक घटना है, यह उस गीत में उतराती नहीं, फिरती जो चट से छानकर हथिया ली जाए। साहित्य अंततः साहित्य ही है, वह परिस्थितियों के सहित अथवा सम्मिलित प्रभाव के अभिव्यंजना है। साहित्य मानव के समाज संपूर्ण व्यक्तित्व की वाणी है, अविभक्त जीवन की इकाई का प्रतिबिंब है। फिर छायावाद तो अपनी छाया के लिए ही प्रसिद्ध है, इसके नाम से ही प्रकट है कि इसमें समकालीन सामाजिक परिस्थितियों की अभिव्यक्ति छाया रूप में हुई है। वह केवल जीवन के वन में छाया एक पड़ी, और जहाँ सामाजिक जीवन की अभिव्यक्ति भाव सत्ता के जितने ही गहरे स्तर पर होती है, जैसा कि श्रेष्ठ साहित्य में सदैव होता है, आलोचक का कार्य कठिन हो जाता है। जो आलोचक यह कठिन कार्य करने में अलसाता है, अथवा जिसमें विश्लेषण की इतनी क्षमता नहीं होती, या जो अपने दृष्टिकोण विशेष के कारण साहित्य में तत्कालिक घटनाओं का अनुवाद ढूंढता फिरता है, वह छायावाद के बारे में प्रायः शिकायत करता रहता है कि वह समकालीन सत्य से दूर रहा और युग धर्म की उपेक्षा कर गया, या वह तत्कालीन राष्ट्रीय आंदोलन से उदासीन रहा। परंतु हमने देखा है कि छायावाद ने काव्यात्मक ढंग से किस प्रकार नर नारी दोनों की पुरानी सामाजिक और नैतिक रूढ़ियों से मुक्त होने की कामना को वाणी दी, किस प्रकार उसने जन सामूहिकता में बंधे हुए व्यक्ति की व्यक्तिकता के लिए संघर्ष किया और फिर उसके व्यक्तित्व के विकास में सहयोग दिया, और किस तरह छायावाद ने मानव मन में सार्वभौम भावना का बीजारोपण करके उसके मन क्षितिज का विस्तार किया। इन सभी बातों का संबंध समकालीन सामाजिक जीवन से ही है। इसलिए कुछ आलोचक कहते हैं कि राजनीतिक ढंग से कोई कार्य गांधीवाद ने किया, साहित्यिक ढंग से वही कार्य छायावाद ने किया। इसी बात को वैज्ञानिक ढंग से कहना चाहें तो कह सकते हैं कि बुद्धिजीवी मध्य वर्ग के नेतृत्व में भारतीय जनता ने अपनी राजनीतिक और सामाजिक स्वाधीनता के लिए जो संघर्ष किया, उसके कई पहलुओं को छायावाद ने सच्चाई के साथ प्रतिबिंबित किया और यथाशक्ति उसे आगे बढ़ाने में योग भी दिया। यह तो हुई छायात्मक अभिव्यक्ति की बात। कभी कभी छायावाद ने सीधे ढंग से भी राजनीतिक और सामाजिक बातों के प्रति अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। सबसे पहले राष्ट्रीयता की भावना को ही लें। हर पराधीन देश में राष्ट्रीयता की भावना का उदय पुनरुत्थान भावना से होता है। इसकी वजह है विजेता जाति प्रायः विजित जाति को दबाने के लिए उसमें से सभी प्रकार की शक्तियों का अपहरण करने का प्रयत्न करती है। भारतवर्ष पर अपनी साम्राज्यवादी छाया डालने के बाद अंग्रेजों ने भी यही किया। उन्होंने भारतीयों के आत्मगौरव को कुचलने के लिए हर तरह की कोशिश की, शुरू से ही हार खाने वाले साबित किया और भारतीयों के मन में यह भाव भरने की कोशिश की कि अपने भौगोलिक परिस्थितियों के कारण सदा से ही भारतवासी अकर्मण्य परलोक की चिंता करने वाले तथा सैनिक भाव से हीन रहे हैं। अंग्रेजों ने हर तरह भारत के इतिहास को विकृत करने की कोशिश की। निसंदेह उन्होंने अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए भारतीय इतिहास की छिपी दबी अनेक सामग्रियों को खोजकर प्रकाश में लाया। अंग्रेजों में भी सभी एक ही प्रवृत्ति के न थे, उनमें कुछ शुद्ध विद्या व्यसनी भी थे। उनके मन में भारतीय संस्कृति को जानने की सच्ची लगन थी। इन सबके सम्मिलित प्रयत्न से भारतवर्ष के कोने कोने में खुदाई हुई। पुरातत्व विभाग ने अतीत की बहुत सी सामग्री खोज निकाली और एक बार प्रकाश में आ जाने पर इन सामग्रियों ने अपना स्वतंत्र अस्तित्व प्राप्त कर लिया। तथ्य तो तथ्य है, इनकी व्याख्या करने के लिए सभी लोग स्वतंत्र हैं। यदि इन तथ्यों के आधार पर साम्राज्यवादी अंग्रेज विद्वान भारत की सांस्कृतिक परंपरा को ही ठहराने की कोशिश कर सकते हैं, तो भारतीय विद्वान उसी आधार पर अपनी परंपरा को गौरवशाली भी तो दिखा सकते हैं। एक बार प्रकाश में आकर तथ्य स्वयं प्रकाश में लाने वाले की इच्छा से भी स्वतंत्र हो जाते हैं और फिर वे सबकी संपत्ति बन जाते हैं। यही हालत भारतीय इतिहास की पुरातात्विक सामग्री की हुई। अंग्रेजों ने इनकी खुदाई चाहे जिस उद्देश्य से की, परंतु इन्होंने भारतीयों में अपनी सांस्कृतिक परंपरा का बोध जगा दिया। भारतवासियों को अपने भूले हुए अतीत का नवीन परिचय प्राप्त हुआ। संपूर्ण जाति में आत्मगौरव का भाव जाग उठा। भारतवासियों ने वर्तमान पराधीनता के अपमान को भूलने के लिए अतीत के स्वर्ण युग का सहारा लिया। वर्तमान की हार का उत्तर उन्होंने अतीत की जीत में दिया। हीनता का भाव दूर हुआ। जो जाति वर्तमान में विभाजित थी वह अतीत की पृष्ठभूमि पर एक हो उठी। इस तरह अतीत के पुनरुत्थान ने संपूर्ण देश में एक जातीय अथवा राष्ट्रीय भावना का सूत्रपात किया। इस पुनरुत्थान परक जातीय भावना को छायावादी कवियों ने भी प्रतिध्वनित किया। पुनरुत्थान भावना प्रसाद में सबसे अधिक थी। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त आदि अनेक ऐतिहासिक नाटकों के द्वारा उन्होंने जातीय जागरण के प्रसार में सहयोग तो दिया ही, इस भावना के उन्होंने कई गीत भी लिखे, जिनमें स्कंदगुप्त का प्रसिद्ध गीत हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार मूर्धन्य है। आत्मगौरव का जैसा ओजस्वी उद्बोधन इस गीत में है, वैसा उस युग के शायद ही किसी गीत में मिले। इस गीत में प्रसाद कहते हैं कि संस्कृति का जन्म सबसे पहले भारत में ही हुआ। राम की दक्षिण विजय, बुद्ध की अहिंसा और अशोक की करुणा संसार को भारत की देन है। संस्कृति में संस्कृत का प्रसार भारत में ही हुआ। अनेक जातियों के उत्थान पतन और आक्रमण के बावजूद भारत अपनी संस्कृति की रक्षा करता हुआ आगे बढ़ता आ रहा है। अंत में वे कहते हैं, वही है रक्त, वही है देह, वही साहस है, वैसा ज्ञान, वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान जिए तो सदा। उसी के लिए यही अभिमान रहे यह हर्ष, न्यूछावर कर दें हम सर्वस्व हमारा प्यारा भारतवर्ष। पेशोला की प्रतिध्वनि और शेर सिंह का शस्त्र समर्पण, ये दो और कविताएं प्रसाद की ऐसी हैं जिनमें जातीय पराजय की मार्मिक झांकी दिखलाते हुए विजय की आकांक्षा जगाई गई है। मेवाड़ की पेशोला झील में निर्धूम भस्म रहित ज्वलन पिंड का जो अरुण करुण बिंब है, वस्तुतः जातीय सूर्य के अस्मित गौरव का प्रतिबिंब है। पेशोला के किनारे किसी समय अपनी जीवन संध्या में महाराणा प्रताप ने जो प्रश्न किया था, उसकी प्रतिध्वनि कवि को आज भी पेशोला की लहरों में सुनाई पड़ती है। यह पुकार केवल पेशोला की नहीं बल्कि संपूर्ण अतीत की है, और केवल अतीत की ही नहीं बल्कि पराधीन वर्तमान की है, क्योंकि उस अतीत की व्यंजना में व्यंग तो वर्तमान ही है। कौन लेगा भार यह, कौन बिचलेगा नहीं, साधना पिशाचों की बिखर चूर चूर होके धूल सी उड़ेगी किस दृप्त फुत्कार से। इस कविता में जिस पिशाच की ओर संकेत किया गया है वह कौन है, इसे बतलाने की आवश्यकता नहीं है। जिनमें साहित्य का थोड़ा सा भी संस्कार है वे जानते हैं कि यह पिशाच अतीत का नहीं बल्कि वर्तमान का है। और शेर सिंह का समर्पण तो एकदम आधुनिक घटना है। शेर सिंह को अंग्रेजों के ही सम्मुख शस्त्र समर्पित करना पड़ा था। शेर सिंह के मुख से जैसे सारा भारतवर्ष अंग्रेजों को जवाब दे रहा है, आज विजयी हो तुम और हैं पराजित हम। तुम तो कहोगे, इतिहास भी कहेगा यही, किंतु यह विजय प्रशंसा भरी मन की एक छलना है। इस तरह की बातें अंग्रेजी शासन के मध्यान्ह में कहने का साहस एक छायावादी ही कर सका। छायावादी कवियों में प्रसाद के बाद जिनमें अपनी परंपरा के गौरव का बोध सबसे अधिक था वे हैं निराला। छत्रपति शिवाजी का पत्र सन 1922 में औरंगजेब के समर्थक जय सिंह के लिए नहीं बल्कि अंग्रेज बहादुर के समर्थक आधुनिक जय सिंहों के लिए, जिसमें अंत तक जाते जाते वे कहते हैं, एक ही भूत शक्तियों से एक हो परिवार, फैले संवेदना, व्यक्ति का खिंचाव यदि जातिगत हो जाए देखो परिणाम, फिर स्थिर न रहेंगे पैर, पस्त हौसला होगा, ध्वस्त होगा साम्राज्य। जितने विचार आज मारते तरंग हैं साम्राज्यवादियों की भोग वासनाओं में, हिंदुस्तान मुक्त होगा घोर अपमान से, दासता के पास कट जाएंगे। इस कविता का बाहरी रूप हिंदू पुनरुत्थान का भले ही हो, परंतु इसमें अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध विद्रोह तथा जातीय एकता का बीज स्पष्ट है। इस कविता तथा ऐसे ही अन्य कविताओं का जो रूप विन्यास हिंदू पुनरुत्थान से सीमित हो गया है, उसके मूल कारण भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण में है। साम्राज्यवादियों की भेद नीति के कारण सांस्कृतिक पुनर्जागरण में भी आरंभ से ही धार्मिक दरार पड़ गई, जिसके प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष प्रभाव से उस युग के बहुत कम विचारक बच सके। जागो फिर एक बार कविता की दूसरी किश्त सन 1921 में भी निराला ने सांस्कृतिक परंपरा की दुहाई देकर आत्म गौरव का उद्बोधन का भाव जगाया। अकाली सिखों के शौर्य तथा गीता की वाणी को स्मरण कराते हुए निराला कहते हैं, शेरों की माद में आया है आज श्यार, जागो फिर एक बार, और फिर मुक्त हो सदा ही तुम, बाधा विहीन बंद छंद जो तुम हो महान, तुम सदा हो महान, है नश्वर यह दीन भाव। तुलसीदास 1935 में स्वाधीनता की इस भावना का संपूर्ण प्रस्फुटन हुआ है। भारत के सांस्कृतिक सूर्य के अस्त होने पर देश में किस तरह अंधकार छाया हुआ है, इसका मार्मिक चित्रण करते हुए निराला ने दिखलाया है कि किस प्रकार एक कवि इस अंधकार को दूर करने की चेष्टा करता है। तुलसीदास के रूप में निराला ने आधुनिक कवि के स्वाधीनता संबंधी भावों के उदय और विकास का चित्रण किया है। छायावादी कवि की तरह निराला के तुलसीदास को भी देश की पराधीनता का बोध प्रकृति की पाठशाला में ही होता है, किंतु छायावादी कवि की तरह हुए भी कुछ दिनों के लिए नारी मोह में पड़कर उस भाव को भूल जाते हैं। अंत में जो ज्ञान प्रकृति की पाठशाला में मिला था, उसका दीक्षांत भाषण उसी नारी के विश्वविद्यालय में सुनने को मिलता है और भविष्यवाणी होती है कि देश काल के सर से विध कर यह जागा कवि अशेष छवि घर, इसके स्वर से भारती मुखर होएगी। इस तरह हिंदी जाति के सबसे बड़े जाति कवि की जीवन गाथा के द्वारा निराला ने अपनी समसामायिक परिस्थितियों में रास्ता निकालने का संकेत दिया है। इन सभी प्रसंगों और उपाख्यानों से साफ मालूम होता है कि आधुनिक कवि ने अपने युग की समस्याओं को सुलझाने के लिए इतिहास अथवा परंपरा का किस प्रकार उपयोग किया। छायावादी कवियों ने कहीं भी अतीत के स्वर्ण युग में लौटने की चर्चा नहीं की। उन्होंने अतीत को प्रायः प्रेरणा स्रोत के ही रूप में स्वीकार किया है और सुखद था, और कभी भी भावाबेग में यह भी आकांक्षा प्रकट की है कि किसी प्रकार यह बीता हुआ स्वर्ण युग लौटाए। परंतु इस सब का अर्थ अतीत का यथावत पुनरुत्थान नहीं है। प्रसाद की कामना नाटिका में आदिम युग के सरल जीवन का आकर्षण अवश्य दिखाया गया है, पर उसे भी वर्तमान वाणिज्य व्यवस्था की प्रतिक्रिया ही समझना चाहिए। अतीत के विषय में छायावादी कवियों ने प्राय यही कहा है कि आह, अब वह स्वर्ण युग लौट नहीं सकता। पंत का कहना है, कहाँ आज वह पूर्ण पुरातन, वह स्वर्ण का काल, भतियों का दिगंत छवि जाल। देव सृष्टि के ध्वंस पर प्रसाद के मन भी रोते हुए कहते हैं कि गया, सभी कुछ गया। परंतु जैसा कि निराला ने लिखा है, प्राचीन परंपरा से आधुनिक कवि का संबंध बहुत कुछ प्रेरणामूलक ही था। कठिन श्रृंखला बजा बजा कर गाता हूँ अतीत के गान, किंतु कभी क्या उस अतीत को आता है मेरा भी ध्यान। शिशु पाते हैं माताओं के वक्ष स्थल पर भूला गान, माताएं भी पाती हैं शिशु के अधरों पर अपने मुस्कान। जाति अथवा राष्ट्रीय भावना के इतिहास में यदि पुनरुत्थान भावना प्रथम चरण है, तो देश प्रेम द्वितीय चरण। अपने गांव और प्रांत की सीमा से बाहर निकलकर संपूर्ण देश को अपनी जन्मभूमि समझना राष्ट्रीयता का मंगला चरण है। लेकिन सच्चे देश प्रेम के लिए आवश्यक है कि अपने देश के पेड़ पौधे, पशु पक्षी, नदी नाले, पहाड़ झरने, ग्राम प्रांतर तथा यहाँ के रहने वाले लोगों से घनिष्ठ परिचय तथा सहज स्नेह, अपने देश की प्राकृतिक सुषमा से जो आदमी प्रभावित न होगा, वह उसकी रक्षा के लिए जान क्या देगा। इसलिए पुनरुत्थान भावना के साथ ही हमारे देश में प्राकृतिक देश प्रेम का भी उदय हुआ है। कवियों ने भावुकतावश भारत माता के भव्य रूप की कल्पना की, जिसके सिर पर हिमालय का हिमकिरीट है, चरण तल में पदार्घ लेने के लिए समुद्र खड़ा है, कटी मेखला की तरह विंध्यमाला है और हृदय के स्नेह स्रोत की जगह गंगा जमुना बह रही हैं। मैथिली शरण गुप्त की नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, चंद्र सूर्य युत मुकुट मेखला रत्नाकर है, नदियां प्रेम प्रवाह फूल था तारे मंडन है। कविता कुछ कुछ इसी भावना का प्रतिनिधित्व करती है, परंतु छायावाद तक आते आते देश प्रेम की इस स्फूर्त स्थूल मूर्ति पूजा का और भी विकास हुआ। विश्व मानवतावाद के विराट भावना ने देश प्रेम की प्राचीन संकीर्णता को दूर कर उसके क्षितिज का विस्तार किया। स्थूल मूर्ति का स्थान सूक्ष्म भावात्मक संज्ञा ने ले लिया। प्रकृति के नाम पर जहाँ चौहद्दी बयान की जाती थी, वहाँ अब प्रकृति का जीवंत और भव्य चित्रण किया गया। त्रिवेदी योगिनी स्थूल और संकीर्ण देश से छायावादी देश प्रेम कितना भावात्मक और व्यापक था, इसे प्रसाद के चंद्रगुप्त नाटक में कार्नेलिया के द्वारा गाए हुए इस गीत के अनुभव से किया जा सकता है। अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। सरस तामरस गर्भ विवाह पर नाच रही तरुशिखा मनोहर, छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा, लघु सुरधनु से पंख पहारे, शीतल मलय समीर सहारे, उड़ते खग जिस ओर मुंह किए, समझ नीड़ निज प्यारा, बरसाते आँखों के बादल, बनते जहाँ भरे करुणा जल, लहरें टकराते अनंत का पाकर जहाँ किनारा। पुराना कवि अधिक से अधिक भारत माता को शेष फन के सिंहासन पर बैठकर खग वृंद जैसे बंदी जनों द्वारा उसकी स्तुति करना ही बड़ी बात समझता था। लेकिन छायावादी कवि भारत माता को सामंत युग की राजरानी बनाने में विश्वास नहीं करता था। छायावादी कवि की भारत भूमि ऐसी है जिससे क्षितिज को भी एक सहारा मिलता है और अनंत की लहरों को भी किनारा प्राप्त होता है। इसका आकाश खगों के छोटे छोटे इंद्रधनुषों ने रंजित रहता है और यहाँ जीवन की हरियाली पर उषा मंगल कुमकुम की वर्षा करती है। ये सभी प्रतीक क्रमशः भारत भूमि के नवजागरण के विविध पक्षों पर प्रकाश डालते हैं। क्षितिज और अनंत की लहरें राष्ट्रीयता के बीच से विकसित होती हुई अंतर्राष्ट्रीयता की सूचना देती हैं, तो हरियाली नवजागरण की और मंगल कुमकुम बरसाने वाली उषा नवजागरण काल की, और चिड़ियों के इंद्रधनुष विविध कल्पनाओं की ओर संकेत करते हैं। छायावाद के इस उदात्त और भावप्रवण देश प्रेम के सम्मुख पूर्ववर्ती युग का देश प्रेम बिना रंग भरे चित्र का रेखा चित्र मात्र है। भावुक देश प्रेम से भी आगे बढ़कर छायावादी कवियों ने देश की स्वतंत्रता के लिए उद्बोधन गीत लिखे। उसी चंद्रगुप्त नाटक में देश के युवकों को ललकारते हुए प्रसाद गाते हैं, हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्वला स्वतंत्रता पुकारती। अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पूर्ण पंथ है बढ़े चलो बढ़े चलो। इस प्रकार छायावादी कवियों ने अस्पष्ट रूप से राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए भी कविताएं लिखी। लेकिन राजनीति स्वतंत्रता तो स्वतंत्रता का केवल अंग है, स्वतंत्रता बड़ी व्यापक भावना है जिसमें मनुष्य की आर्थिक सामाजिक नैतिक धार्मिक आदि सभी प्रकार की मुक्ति का भाव निहित है। समष्टि में स्वतंत्रता का अर्थ है मनुष्य के समूचे व्यक्तित्व के विकास के किए पूर्ण सुविधाओं की प्राप्ति और व्यक्तित्वरोधी समस्त बाधाओं की समाप्ति। स्वतंत्रता के इस व्यापक अर्थ पर विचार करते ही तुरंत सवाल उठता है कि देश की स्वतंत्रता माने किसकी स्वतंत्रता? यदि अंग्रेज यहाँ से चले गए तो क्या संपूर्ण भारतवासियों को स्वतंत्रता मिल जाएगी? क्या समाज के निचले स्तर के लोग अर्थात किसान मजदूर भी स्वतंत्र हो जाएंगे? अंग्रेजों के चले जाने से क्या गरीबों को भी सुविधाएं मिल जाएंगी? जिस देश में धर्म प्राण धनी मानी लोग चीटियों के बिल पर चीनी भुरभुराते फिरते हों अथवा राम भक्त द्विज बंदरों को पुए खिलाते चले, वहां दीन मानो की क्या गति होगी? इसका अनुमान सहज ही किया जा सकता है। अंग्रेजों के चले जाने के बाद शासन की बागडोर तो ऐसे ही लोगों अथवा इन्हीं के भाई बंद के पास आती। इनसे गरीबों की भलाई होगी इसकी क्या उम्मीद? जिनकी जीव दया चीटियों और बंदरों तक ही सीमित है उनकी करुणा मानव को कितनी मिल सकती है, इसे समझना कठिन नहीं। अनामिका की दान 1935 में कविता में निराला ने ऐसे ही दयालु ढोंगियों का पर्दाफाश किया। इस कविता में एक ऐसे राम भक्त का चित्रण है जो दुख पाने पर कपियों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, वो रण के द्विज हैं, बारहों मास शिव को भजते हैं, रामायण का पारायण करते हैं और प्रतिदिन सरिता मंजन करते हैं। इन्हीं द्विजोत्तम ने एक दिन गोमती तट पर झोली से पुए निकाल लिए, बढ़ते कपियों के हाथ दिए, देखा भी नहीं उधर फिर कर, जिस ओर रहा वह भिक्षु इतर। चिल्लाया क्या दूर मानव, बोला मैं धन्य श्रेष्ठ मानव। स्वाधीनता का अभिलाषी छायावादी कवि ऐसे ही मानव के भविष्य के लिए चर्चित था। वह जानना चाहता है कि इस गरीब ने आखिर क्या किया है जो उसे यह पाप भोगना पड़ रहा है। वह इस सवाल का जवाब चाहता है, मगर जवाब इसका कौन दे? ढोता जो वह कौन सा श्राप, भोगता कठिन कौन सा पाप, यह प्रश्न सदा ही है पथ पर सदा मौन इसका उत्तर। इसके जवाब में अधिक से अधिक यही दिखाई पड़ता है कि उसकी गरीबी को जड़ दूर करने की जगह धनी लोग दान देकर उसका मुंह बंद कर देते हैं, और वह दान भी कितना, बस एक पैसा। इतनी बड़ी दया और ऐसा दान, जो बड़ी दया का उदाहरण वह पैसा एक उपायकरण। स्वाधीनता के इस बढ़ते हुए संघर्ष में निराला ने गरीबों का ध्यान बराबर रखा और उनका पक्ष लिया। तुलसीदास में भारत की दीन दशा पर प्रकाश डालते हुए वे लिखते हैं, रण के अश्रुओं से सस्य सकल, दलमल जाते ज्यों दल के दल, शूद्रगण क्षुद्र जीवन संबल पुरपुर में, वे शेष श्वास पशुमुख भाष, पाते प्रहार अब हताश्वास। सोचते कभी आजन्म ग्रास द्विजगण के, होना ही उनका धर्म परम, वे वर्णाधम रे द्विज उत्तम, वे चरण चरण बस वर्णाश्रम रक्षण के। स्वाधीनता की लड़ाई में इन चरणों की ओर ध्यान तो सन 30 के बाद दिया जाने लगा, क्योंकि उसी के आसपास किसान आंदोलन ने ज्यादा जोर पकड़ा। परंतु किसानों की दीन दशा को की ओर निराला का ध्यान बहुत पहले से ही रहा है। सन 23 में ही विप्लव के बादल का आह्वान करते हुए निराला कहते हैं, रुद्ध कोष है क्षुब्ध तोष, अंगना अंग से लिपटे भी आतंक अंक पर कांप रहे हैं, धनी वज्र गर्जन से बादल त्रस्त नयन मुख ढांप रहे हैं, जीर्ण बाहु है शीर्ण शरीर, तुझे बुलाता कृषक अधीर, ऐ विप्लव के वीर। इस तरह छायावाद ने प्रत्यक्ष रूप से भी समकालीन राष्ट्रीय आंदोलन को प्रतिबिंबित किया और प्रभावित करने में महत्वपूर्ण कार्य किया। यह जरूरी है कि सभी कवियों ने समान रूप से इस भाव की कविताएं नहीं लिखी, लेकिन यह सच है कि सभी कवियों ने राष्ट्रीय आंदोलन के किसी न किसी पहलू को यथाशक्ति चित्रित करने की कोशिश की। इन सब में निराला सबसे आगे रहे। उन्होंने अधिक से अधिक व्यापक और क्षेत्र तथा प्रगतिशील सामाजिक शक्ति को अपनाने की चेष्टा की। उन्हीं के प्रयत्न से छायावादी कविता बहुजीवन की छवि कहलाने का गौरव प्राप्त कर सकी। यहीं पर जागो फिर एक बार शीर्षक समाप्त होता है।